ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
इसीलिए तो आपको आशुतोष कहा, इसीलिए तो आपको दुनियाओं ने अवगढ़दानी कहा। और ये सारी चीज कुछ घटने वाला नहीं जितने बांटोगे आप। कमर्थम दास्य हम भवतु, फिर मैं आपको ऐसा कौन सा वस्तु दू? कम अर्थम अहम दास्य। हाँ, एक चीज हमने पता लगाई है जो आपके पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। एक चीज हमने पता लगाई है कि जो आपके पास है नहीं, सिर्फ मेरे पास है। वो क्या चीज है? भगवान शिव के पास यानी परमात्मा के पास मन उपाधि नहीं है। तुम लोग वेदांती हो ना, समझ गए ना? भगवान के पास अंतःकरण उपाधि तो है ही नहीं। कार्य उपाधि रयम जीव, कारण उपाधि ईश्वर। कार्य उपाधि वाला जीव होता है, कारण उपाधि वाला ईश्वर होता है। कारण माया, कार्य अंतकरण। अब भगवान के पास मन है, बोलो। कार्य उपाधि नहीं है तो क्या मन कहां से आएगा उनके पास? इसीलिए तुमको मन ही तुमको दुख देता है और शिवजी को दुख देने वाला तत्व तो है ही नहीं उनके पास। दुख देने वाला तत्व तो उनके पास है ही नहीं, तो इसीलिए तो मस्त है वो। और दुख देने वाला तत्व तो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम हम जीवात्मा रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो भगवान शिव आपके पास एक चीज नहीं है, तो मैं चाहता हूं जो सिर्फ मेरे पास है, और मैं चाहता हूं कि वही आपको अर्पण करूं। हैं? कमर्थम दास्ये हम भवतु, भवत अर्थम मम मना। आपके लिए तो मैं अपना ही मन ही दे सकता हूं, और मेरा मन मुझे हैरान करता है। आप संभाल लो, चलो आप रख लो, है सब कुछ है तो एक मन नहीं है तो ये अधूरा क्यों? सब कुछ है तो मन भी ले लो, मेरा मन भी ले लो। अब इस तरह भगवान शिव के पास सब कुछ है भक्तों को देने के लिए, कोई चीज की कमी नहीं। दिव्याति दिव्य है, अब यहां आकर शंकराचार्य जी कहते हैं मुझे देने के लिए, भक्तों को देने के लिए आपके पास है ही क्या चीज है? ये पागल है, ये मूर्ख लोग हैं जो कि आपके हमेशा रात दिन भक्ति करते हैं। असनम गरलम, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस श्लोक, गाता भी मैं, गुनगुनाता भी हूं। हाँ, क्या एक गीत था ना पुराना, गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं। हंसने की बाधा किया इसलिए सदा मुस्कुराता हूं। तो मैं गुनगुनाता हूं इसलो। असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष। असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष। मम दास्यसि किम् किमस्ति शम्भो मम दास्यसि किम् किमस्ति शम्भो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि।
आपके पास क्या है मुझे देने के लिए बोलो? कुछ भी नहीं है। हर देने वाला व्यक्ति वही देता है जो अपने पास है, जो अपने पास नहीं है वो कहां से ला कर देगा? हम लोग पहले, आप लोग भी ट्रेन की यात्रा तो खूब करते रहे होंगे, ट्रेन जर्नी करते रहे, और हम भी ट्रेन जर्नी करते थे पहले। हरिद्वार से जब काशी पढ़ने के लिए जाते थे, पूरी ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ती थी, दिन भर रात भर की यात्रा करो फिर पहुंचो। बम्बई से दिल्ली जाना पड़ता था, 24 घंटे की यात्रा होती थी पहले, अभी राजधानी से 17-18 घंटे में पहुंचने लग गए। इधर 22-23 घंटा 24 घंटे से पहले कोई ट्रेन नहीं पहुंचती थी। तो पूरी बंदोबस्ती के साथ ट्रेन में चढ़नी पड़ती थी, अपना बिस्तरा लेके जाओ और अपने भोजन पानी अपने ही लेके जाओ। जब दोपहर को खाने का समय होता था तो अपने पास जो भोजन, कोई करेले की सब्जी और पूरी रखता था, परौंठा रखता था, अक्सर करेले की सब्जी, क्योंकि वो खराब नहीं होती है ना ओवरनाइट, फ्राई करके रख ली, या फिर भिंडी फ्राई करके रख ली, या परवल फ्राई करके रख ली, और आलू रखा तो गर्मी में सुबह तक, पहले तो एयर कंडीशन थे नहीं ट्रेन में, खराब हो जाता था, खाने लायक नहीं होता था, शाम को तो खा लिया और सुबह फिर क्या करोगे, आलू तो खराब होता था। जब शाम को खाना खाने के लिए बैठे, खाना खाए, फिर सुबह खाना खाने के लिए बैठे, तो किसी स्टेशन में जब गाड़ी खड़ी होती थी तो फिर डब्बा खोल के खाने लगे। कोई परौंठा निकाल कर खा रहा है क्योंकि उसके पास परौंठा है, कोई पूरी निकाल कर खा रहा है क्योंकि उसके पास पूरी है, कोई चिवड़ा निकाल कर खा रहा है क्योंकि उसके पास चिवड़ा है, कोई ब्रेड टोस्ट निकाल के खा रहा है उसके पास वही है। तो मांटने वाले तो डब्बे के प्लेटफार्म में डब्बे के पास आके खड़े हो जाते थे, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो, बाबू हैरान करते थे। हैं? इलाहाबाद में नहीं, हर आबाद में ये है, हर आबाद जहां आबादी है सब जगह यही बर्बादी है, सब आबाद में ऐसा ही होता था, दे दो बाबू दे दो दे दो। तो कई बार खिड़की बंद करनी पड़ती थी, हैं? खाने न देवे, और कदाचित तुमने दया करके एक को एक टुकड़ा दे दिया, वो और लोगों ने देखा तो भीड़, ये देने वाला है ये, तो वो गया एक रोटी लेकर, तो फिर आ गए 50, 10 आ जाएंगे, दे दे बाबा दे दे बाबा। हैरान पारते थे, और देने पड़ता था। वो क्या, जो खाने बैठे वही ना देंगे? परोठा खाने बैठा है तो परोठा देगा, पूरी कहां से देगा उसको? पूरी खाने बैठा है तो पूरी देगा, परोठा कहां से देगा? अब कोई बिहारी होगा सत्तू खाने बैठा होगा तो सत्तू ही देगा, चूड़ा खाने बैठा हो तो चूड़ा देगा। अब भगवान का भोजन क्या है? शिव जी क्या खाने बैठते हैं? तो भगवान का भोजन तो असनम गरलम। महाराज आपका भोजन तो विष है, जहर है, गरल है। अब आप प्रसन्न होकर खाते खाते अपने थाली से प्रसाद थोड़ा सा दोगे तो क्या प्रसाद दोगे आप? अमृत। अपने आप खाएंगे जहर तो भक्तों को अमृत देंगे? तुम्हारे पास देने के लिए है क्या चीज? वही जहर ही तो बांट रहे हो। और संसारी लोग तो भगवान से भी वही जहर ही मांगते हैं, है ना? विषय मांगते हैं ना? विषय मांगते हैं कि नहीं? तो मैं हमेशा ये व्याख्या किया करता हूं, विषय, विषय माने पदार्थ, धन संपत्ति दौलत पैसा आदि, है ना? इसको वेदांत में क्या बोलते हैं? विषय। अब विष लिखो और विषय लिखो तो क्या फर्क है? तो विषय लिखने के लिए पहले विष लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद यह जोड़ दो तो ऑलरेडी तुमने विष तो पहले लिखी कि नहीं है? बोलो ना। व ई अनि मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, वो तालवे सा भी नहीं है, दंते सा भी नहीं है, मूर्धन्य श है ना? पा लिख कर पेट चीरो तो क्या हो गया? सा ऋषि वाला सा। विषमा भी वही लिखना होगा और विषय में भी वही लिखना होगा। तो पहले विष लिखो उसके बाद ये जोड़ो तो क्या हुआ? विषय। तुमने भगवान से कहा महाराज मुझे विषय दे दो, तो विषय य बोलने से पहले विष बोला कि नहीं? बोलो हैं? यह तो बाद में बोला, पहले क्या मांगा? विष मांगा, उसके बाद यह कहा। तो भगवान के पास तो वही ना है, तो वही दे देंगे, वो विष ही देंगे, क्योंकि वही खाने के लिए बैठे थे। वही ले, ए जा उधर जा, ए ले जा, जा बम्बई बैठ, जा कलकत्ते, जा दिल्ली, जाए लंदन, जाए अमेरिका। इसीलिए तो भगवान से जो विषय प्राप्त करते हैं वही अमर हुआ है। बोलो, विषय मांगने वाला कोई अमर हुआ है? तो विषय सेवन करने वाला विष सेवन करने वाला है, तो उससे महाराज मेरा क्या होने वाला है? ये तो अनेक जन्म में वही सेवन करता हुआ आया हूं, एक जन्म में क्या, हजारों लाखों करोड़ों जन्म, जन्म जन्म से मैं वही तो सेवन करता आया हूं, क्या विषय? और आप भी वही सेवन कर रहे हो, हम भी वही सेवन करते आए हैं, और आश्चर्य यह है कि आप उसके सेवन करते हुए भी नहीं मरते हो और हम उसके सेवन कर करके मर मर के हैरान हो गए, अब नहीं चाहिए हमको। असनम गरलम, मैं इसकी व्याख्या बड़ी मस्ती से किया करता हूं। फणी कलाप कलाप माने माला, फणी गले में आपका जो हार है माला है वो क्या है, वो तो फणी सर पर। कहते हैं शादी के बहुत वर्षों तक बच्चे नहीं हुए दशरथ के। सुना है ना कहानी है, कई वर्षों तक, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादी करने पर भी बहुत वर्षों तक बच्चे नहीं हुए। दशरथ बड़ा दुखी हुए। उनको तब तक तो कोई चिंता नहीं हुई जब तक एक दिन पितरों को तर्पण देते समय में, पिंड देते समय में, उनके पिता अज राजा अज खुद आकर उपस्थित होकर रोते हुए उनके हाथ का पिंड खाया। और समय में वो रोते नहीं थे, बड़े खुशी से खाते थे। उस दिन वो रोते हुए खाने लगे, रामायण में स्पष्ट लिखा है। दशरथ ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, जब मैं वार्षिक श्राद्ध करता था और आपको आह्वान करता था पिंड बनाकर, खीर का, गाय के दूध के खीर का पिंड बनाकर आपको जब देता था हाथ से, आप मेरे हाथ से बड़े खुशी से प्रसन्न से उसको ग्रहण करके जाते थे, मुझे खूब आशीर्वाद देते थे, और आपके आशीर्वाद से ही तो ये सब ठीक ठाक चल रहा था, ये आज क्या हुआ? आज तिथि थी आपकी, मैंने श्राद्ध आरंभ किया और ये पिंड बनाकर दिया, आप आए, आह्वान की मैंने, आप आए, पिंड तो लिया, लेकिन ये रो क्यों रहे हो, रोते हुए क्यों ग्रहण किया? पित्री आज ने कहा दशरथ को, बेटा रोने का कारण यह है, इस तरह तुम श्रद्धा से हमको हर साल याद करते हो और आह्वान करते हो, बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्राद्ध करते हो, इस श्रद्धा का भाव ही श्राद्ध है, श्राद्ध और कुछ नहीं है। पितरों के प्रति जो आपका श्रद्धा भाव है उसी का नाम श्राद्ध। लेकिन ये क्रम जब तक तुम जिंदे रहोगे तब तक तो तुम निर्वाह करोगे और हमें इसी तरह तृप्त करते रहोगे, लेकिन जब तुम मर के जाओगे तो हमको तृप्त कौन करेगा? क्यों महाराज? बोले क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो है ही नहीं, मरने के, तुम्हारे मरने के बाद आगे हमें पिंड पानी कौन देगा, हमको तृप्ति कौन करेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो है ही नहीं। तो इस चिंता से हम दुखी हैं, तो हमारे रोने का कारण यही है। जब राजा दशरथ को पता चला कि अरे संतति न होने की समस्या तो केवल हमको नहीं, हमारे पितरों को भी है, देवताओं को भी समस्या है, आगे नित्य निरंतर देव भाग कौन देगा, यज्ञ कौन करेगा तुम्हारे मरने के बाद? आज तो चले गए। अब राजा दशरथ को चिंता हुई, तुरंत गुरु वशिष्ठ के यहां गए और सारी घटना सुनाई। गुरुदेव इसका समाधान होना ही चाहिए, पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। शास्त्र में कोई विधि है कि नहीं काम्य कर्मों का? वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज वेद 80% तो काम्य कर्मों से ही भरा हुआ है, सारा वेद काम्य कर्म का ही प्रतिपादन में लगा हुआ है। तो यदि ऐसा है और सत्य है तो मुझे पुत्र चाहिए, जो अनुष्ठान करना है जैसा करना है यह आपकी जिम्मेवारी है। वशिष्ठ जी ने कहा वेद में पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान है, विधिपूर्वक वो यज्ञ करेंगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। बोले करिए फिर। बोले मैं अकेले नहीं कर सकता, श्रृंगी ऋषि इसमें बहुत पारंगत हैं, शांता भारिया शांता पुत्र श्रृंगी ऋषि शांता, तो वो श्रृंगी ऋषि उनको लेके आओ बुलाओ और वो आ जाए तो पुत्रेष्टि यज्ञ निर्विघ्न हो सकता है और तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। राजा ने कहा कि वो हम कहते हैं करेंगे। शांता भरतारम तो गए दशरथ और श्रृंगी ऋषि को बुला लिया और राजी हो गए आ गए और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ देवता अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और आपने प्रसंग तो सुनाई है, सुवर्णमय पात्र में खीर लेकर प्रकट हो गए और वशिष्ठ को कहा कि तुम अपने जजमान को दो और जजमान पत्नी ये खाएं तो अविष्ट फल प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो पायस लिया और अपने रानियों को बुलाया तो संयोग से उस समय दो ही रानी वहां उपस्थित थी। ये तो आप लोगों ने रामायण के प्रसंग में सुनाई है, कौशल्या और कैकेयी दोनों वहां उपस्थित थी। राजा ने दिया कि लो खाओ तो दोनों ने आधा आधा बांट लिए। इतने में सुमित्रा आ गई, क्या खा रही हो बहनों? बोले ये यज्ञ प्रसाद है, अब फिर मेरा भाग कहां है? अरे तुम थी नहीं, हम दोनों खाने के लगे, अब तुम आ गई हो, लो 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 आधा तुम लो। तो उसने भी आधा दिया, उसने भी आधा दिया तो सुमित्रा को दो भाग हो गए। तीनों रानियों ने उपाय खाई। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, राजमहल में पहुंचे तो धीरे धीरे रानियों का लक्षण देखा, राजा बड़े खुश हो गए। 9 महीना पूरा हुआ, 10वें महीना में कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया और जैसे कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया ये खबर सुनाने के लिए कौशल्या की सेविका दासी राजमहल में प्रवेश करके महाराजा को संबोधन करती हुए, जय हो महाराज धीराज की, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। बोले आज क्या खबर लाई हो? महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, कौशल्या ने पुत्र जन्मा है। वाह क्या कहना, बड़े खुश हो गए। और दशरथ ने जो पहन रखा था बढ़िया माला गले में, पहाड़ से माला उतार के और दे दिया, ले बेटे इतना बढ़िया समाचार, शुभ समाचार आज तक मुझे किसी ने नहीं सुनाया था, सबसे पहले सुनाने वाली तुम हो, लो जाओ। निकाला और दे दिया। दशरथ ने जो माला दी है उस माला से उस दासी का तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। बोलते हो ना नौलखा माला, गीत गाते हो कि नहीं तुम लोग? और दशरथ का माला के 9 लाख का रहा होगा, करोड़ों का अरबों का होगा। और उस माले से तो उस दासी का तो कल्याण हो गया। अब इसी तरह हे शिवा प्रसन्न होकर खड़े हो जाएं और मुझे अपने गले का माला निकाल कर दोगे तो मेरा क्या हाल होगा। प्रसन्न समझ में आया कि नहीं आपको? शंकराचार्य जी कह रहे वही असनम गरलम फणी कलापो। आप खुश होकर आपके गले की माला निकालकर मुझे दोगे तो वो तो सर्प का माला था, वो मेरा क्या होगा। वसनम चर्मच तीसरा उदाहरण दिए, आप पहनते क्या हो? चर्म